इस भूतल पर जन्म लेकर जीवन धारण करने के बाद हर इंसान को ये अधिकार है कि वो चैन की सांस ले। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए एक अकेला सुख से नहीं जी सकता है। हम मिलके ही अपने जीवन को और इसके द्वारा समग्र विश्व को सुखमय बना सकते हैं। एक व्यक्ति खुद सुखी है या संपन्न है, लेकिन दूसरे व्यक्ति अगर अभावों में जी रहे हैं, वे शोषित है और उनका दमन हो रहा है, तो जो संपन्न है वो भी सुख के जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि उनकी शोषित लोगों की जो आह है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर रहते हुए सुख का सम्मान युक्त अपना जीवन जिए। और इसलिए ही जीवन जीने की तीन पद्धतियां बताई गई हैं। एक है कि जियो, व्यक्ति अपने जीवन का ख्याल करता है और अपना जीवन जीता है, लेकिन उससे ऊपर उठकर जीवन जीने की विधि है कि जियो और जीने दो। हम भी जिए और आप भी जिए। जब हम मिलकर जिएंगे तभी संसार का अस्तित्व भी बना रहेगा और जीवन में हमें आनंद होगा। लेकिन सबसे उच्च जीवन पद्धति है कि दूसरों के लिए जिए, लिव फॉर अदर्स। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर अन्य अस्तित्वों के लिए सम्मान, अपने दिल का औदार्य और स्वार्थ से ऊपर होकर एक मानवता के साथ जीवन जीना, ये सब आंतरिक धारणाएं हमारे अंदर होना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जितना जितना बॉडी कॉन्शियस होता जा रहा है, वो स्वार्थ में फंसता जा रहा है और इसलिए दिन रात वो केवल अपनी ही सोचता है। Who cares? हमें दूसरों की क्या परवाह है? ये बात हमारे बुद्धि के अंदर आ गई है, लेकिन केवल सेल्फ सेंटर्ड बनने से या अपने ही स्वार्थ को सोचने से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हमें न केवल हमारे साथ जीने वाले अन्य इंसानों के लिए सोचना है, लेकिन इस संसार को सुंदर बनाने वाले, चेतना युक्त बनाने वाले पशु पंछी और आसपास के प्रकृति जगत के लिए भी हमें सोचना है, और उसके लिए एक दिल की विशालता, सर्व के लिए प्यार की भावना, ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये सारे मूल्य व्यक्ति केवल शिक्षा से नहीं सीख सकता है, लेकिन बचपन से ही जिस घर में वो पलता है, जिस वातावरण में वो रहता है, जिस माता पिता के द्वारा जन्म लेता है, उनके द्वारा भी वो बहुत कुछ सीखता है। इसलिए जन्म लेने के बाद नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही वो माता पिता के वाइब्रेशंस, उनके कर्म व्यवहार के प्रभाव को अपने आप में लेता जाता है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे एक लेसन में आता था कि एक राजपूतानी थी और उसका पति युद्ध में अपना क्षत्रियपन का कर्तव्य कर रहा था। बहुत दिनों के बाद वो वापस घर आता है और उस राजपूतानी के साथ उनका छोटा सा बच्चा होता है और वो राजपूत उस राजपूतानी को प्यार करता है, उसको चूमने के लिए जाता है, तो वो राजपूतानी कहती है कि नहीं, बच्चा देख रहा है। माना बच्चे जो कुछ देखते हैं, एहसास लेते हैं, सुनते हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार से भी बहुत कुछ अपने आप में सीखता है। भारत की और उसमें भी विशेष हिंदू समाज की रचना इस प्रकार की है कि पुरुष बहुत करके कमाने के लिए ज्यादा समय घर के बाहर रहते हैं और माताएं बहनें घर को संभालती हैं, घर का वातावरण बनाती हैं, बाल बच्चों को और घर के सदस्यों को भोजन खिलाती हैं और इसके द्वारा उनके अंदर संस्कारों का सिंचन करती हैं। इसलिए घर का केंद्र बिंदु बहने हैं और बहने अगर इस बात के लिए जागृत होंगी, शिक्षित होंगी, उनके अपने जीवन के अंदर मूल्यों की धारणा होगी और उनके मन के अंदर हर व्यक्ति के अस्तित्व का महत्व होगा, तो अवश्य वो अपने बच्चों को और घर के सदस्यों को इस बात की जागृति दिला सकती है और बचपन से ही उनके अंदर इस प्रकार के संस्कारों का सिंचन कर सकती है। इसलिए माता को हम प्रथम गुरु कहते हैं, क्योंकि लौकिक दुनिया की शिक्षा तो स्कूल कॉलेज में बच्चे जाकर के लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा तो केवल हम जानते हैं कि अर्थ उपार्जन के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए है। लेकिन जहां तक शिक्षा का उद्देश्य, हम ये समझते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ऐसे योग्य नागरिकों को तैयार करना है जो देश और समाज को काम में आवे। अगर उस उद्देश्य से कोई शिक्षा की बात हम कर रहे हैं तो मैं समझती हूं कि ऐसी शिक्षा तो घर से ही मिलती है, माताओं से ही मिलती है। आज जो हम रासायनिक विज्ञान में जो भी इक्वेशन सीखते हैं वो कोई हमें प्रैक्टिकल जीवन में समाज में आकर के करने नहीं होते हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन के अंदर तो हमें आपस में मिलके कैसे चलना है, एक दो को कैसे अंडरस्टैंड करना है, एक दो के लिए कभी त्याग भी करना होता है, कभी कुछ सहन भी करना होता है, हर व्यक्ति के कर्तव्य को महत्व देना होता है। ये सारी बातें जीवन के अंदर चाहिए और ये शिक्षा तो स्कूल से या किताबों से नहीं मिल सकती है, लेकिन हमारे व्यवहार से ही हम दे सकते हैं। इसलिए अगर बहनें इस विषय में जागृत हैं, शिक्षित हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ही बहनों के अंदर कुछ विशेष गुण हैं, जिन गुणों को लेकर के वो नैतिक मूल्यों का उत्थान, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना या चरित्र उत्थान और श्रेष्ठ संस्कार सिंचन का कार्य कर सकती है। जैसे कि वात्सल्य, क्षमा, सहनशीलता, स्वार्पण, लाज सतीत्व, ये सारे गुण बहनों में नैसर्गिक रूप से विशेष है, इसलिए वे अपने इन गुणों को लेकर के ये कार्य अच्छी तरह से कर सकती है। नहीं तो हम देखते हैं कि अगर माताएं इस विषय में जागृत नहीं है और वे बचपन से ही बच्चों को उनके आंतरिक विकास के लिए, सद्गुणों के विकास के लिए, श्रेष्ठ चरित्र के लिए कुछ बातें नहीं सिखाती हैं, तो बच्चे ऐसे ही तैयार होते हैं। छोटेपन में कहानी हम सब सुनते थे कि कैसे एक बच्चा बचपन में ही स्कूल जीवन में छोटी छोटी चोरी करता था, कभी किसी की पेंसिल उठाकर ले आता था, कभी किसी की नोटबुक उठाकर ले आता था, लेकिन माँ बाप ने उसको कभी कुछ नहीं कहा। उसके कारण उसके अंदर ये चोरी के संस्कार दृढ़ होते गए और जब बड़ा हुआ तो वो एक बहुत पक्का चोर बन गया। और एक बार ऐसी चोरी की जो उसको फांसी की सजा दी गई, और उस सजा से पहले जब उनसे पूछा कि आपको अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मुझे मेरी माता से मिलना है। और उनकी माता से जब उनको मिलाया गया तो उसने अपनी माँ को पास बुलाकर उनके कान को काट लिया, कान में बात कहते हुए। तो सबने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि अगर बचपन से मेरी माँ मुझे सुधारती, छोटी छोटी चोरी जब मैं करता था उस समय ही अगर वो मुझे रोकती थी, तो आज ये दिन मेरे जीवन में नहीं आते। इसलिए बच्चे कोई जंगलों में तैयार नहीं होते हैं, हमारे बीच में ही जन्मते हैं, पलते हैं और सीखते हैं। हम फरियाद करते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के युवा ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे बने कैसे हैं? उन्होंने बातें ये कहाँ से सीखी है? हमारे घर से सीखी है, हमारे समाज से सीखी है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, संस्कारी बनाते हैं, तो हम अनेकों का बना सकते हैं। इस विश्वविद्यालय का और इसमें समर्पित 7,000 से भी अधिक हम बहनों का ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि आज अगर हम एक अपना जीवन गुणों से युक्त, आध्यात्मिक समझ से परिपूर्ण बनाते हैं, तो हम सैकड़ों हजारों भाई बहनों के जीवन को ऊंचा बना सकते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर ये आंतरिक आध्यात्मिक जागृति आ जाती है, तो समानता का भाव स्वतः सर्व के प्रति आता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस होता है तब तक उसके बुद्धि के अंदर ये सारे भेद रहते हैं कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, ये काला है या गोरा है, ये शिक्षित है ये अनपढ़ है, ये भारत का है ये विदेश का है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये गुजराती है ये मराठी है, ये गरीब है ये धनी कहे, ये सारे भेद तब तक बुद्धि में रहते हैं जब तक व्यक्ति को अपनी सही आइडेंटिटी नहीं है। और जब आध्यात्मिक शिक्षा हमें प्राप्त हो जाती है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, लेकिन हम तो एक शक्ति है, एक चेतना है, और इस प्रकार जब तक स्त्री और पुरुष दोनों आध्यात्मिक समानता को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक समानता की स्थिति और एक दो के लिए सम्मान और सद्भाव से भरा हुआ व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य ही हमें ये सिखाता है कि हम एक आत्मा है, शरीर कर्म करने का एक साधन है, साध्य नहीं। जब इस बेसिक सत्य को हम समझ लेते हैं तो हमारी बुद्धि दैहिक भावों से ऊपर उठकर आत्मविकास की ओर चली जाती है। आत्मविकास अगर है तो हम भौतिक विकास का भी सुख ले सकते हैं, अगर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं है तो भौतिक विकास विनाश का साधन बन जाता है। तो ये आध्यात्मिकता की जागृति में आगे बढ़ने में प्रैक्टिकली देखा गया है कि बहनें बहुत सुंदर अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं। और इसलिए हम सब जानते हैं माता मदालसाने जब वो अपने बच्चे को लोरी देती थी तो वो बचपन से ही ये पाठ पक्का कराती थी कि शुद्धो असि बुद्धो असि, तुम शुद्ध आत्मा हो, प्रबुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। और बचपन से इस बात का बीज डालने से बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर भी वो अच्छे संस्कार आते हैं। अगर वो बात नहीं है तो हम देखते हैं कि माताएं ही घर में बच्चा पैदा होता है तब तो खुश होके पेड़ा बांटती है, लेकिन जब घर में बच्ची पैदा होती है तो उनका ही मुंह पीला हो जाता है और उनको ही अच्छा नहीं लगता है। एक स्त्री ही स्त्री को सासू के रूप में, बहू के रूप में जो बहन है उसको दुख देने का कार्य करती है, लेकिन जब वही बहनें आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेती हैं तो वो छोटे बड़े बच्चे बूढ़े भाई बहन सबको उस ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसलिए महिलाएं मानव अधिकार और मानव जीवन के मूल्यों के विकास में क्या पार्ट प्ले सकती है ये सोचने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचा पार्ट प्ले कर सकती है और बहुत सुंदर परिणाम हम ला सकते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें प्रैक्टिकली इस कार्य क्षेत्र में दिन रात लगे हुए हैं और यही कारण है हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने इस विश्वविद्यालय की शुरुआत से ही जो भी बहने और भाई समर्पित हुए उनके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस ना आवे और आत्मभाव विकसित हो उसकी शुरू से ही ट्रेनिंग दी। जो भी बहने समर्पित हुई शुरू में उनके स्त्रीपन को तुड़ाने के लिए बाबा ने उन्हें हाफ पेंट और शर्ट पहनाया और यही कहा कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, इस स्मृति को धारण करो क्योंकि विष्णु चतुर्भुज स्त्री और पुरुष श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। हमें अपने जीवन के अंदर स्त्रीपन की जो विशेषताएं हैं और पुरुषपन की जो विशेषताएं हैं, लव एंड पावर दोनों को धारण करना है और दोनों कॉन्शियसनेस की जो बुराइयां हैं या जो वीकनेसेस है उसको दूर करना है। यही कारण है कई बार हमें भाई बहनें पूछते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी बहनें क्यों नहीं तिलक करती हैं, क्यों नहीं कान नाक में कुछ पहनते हैं। उसका एक ही कारण है कि इससे हमारा स्त्री कॉन्शियसनेस बढ़ता है, जबकि विद्यालय इस बात को मानती है कि हमें इस दैहिक भान को नहीं बढ़ाना है लेकिन आत्मभान को विकसित करना है, क्योंकि आत्मभान ही सर्व मूल्यों की जननी है और देह भान सभी नेगेटिविटी का मूल कारण है। इसलिए वैसे भी धर्म सत्संग में आप देखेंगे बहनें ही आगे होती हैं, तो क्यों नहीं जब ये समय आ चुका है और आवश्यकता है जन जन के अंदर मूल्यों को धारण कराने की, तो बहनें फिर से कृत संकल्प बन जाए, दृढ़ निश्चय बन जाए और ये जीवन के अंदर एक धारणा कर लें कि हम अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे और अपने बच्चे और अपने घर के सदस्यों के अंदर भी इस बात की धारणा कराएं। ओम शांति।